Father, we come for the second session today, Lord. And I pray, Father, you speak to us. You teach us. You teach us. You empower us to walk in that teaching. We need both, Lord. In ourselves, we do not have the strength. Strength is with you. In ourselves, we do not have understanding. Understanding is with you. Help us, Lord. Even this hour, help us to remain alert, to give our hearts, our ears to you, and sit at your feet and learn of you, Lord. For in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So young people, all those who are young, it is good for a young man to bear a yoke in the days of his youth. Discipline. You see, if you look at this building, you see these pillars. The pillars are the ones which are holding this building. If you had seen when they put those pillars, pillar had two things. First, they put a frame of steel. Then they fill it with concrete. Then it is able to hold this building. If there was no steel frame, then just concrete alone, this whole thing will crash when the weight increases. You know, John chapter 1 and verse 17 says, John 1 and verse 17, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई. अनुग्रह और सच्चाई. अनुग्रह केवल अनुग्रह नहीं, केवल सच्चाई नहीं, अनुग्रह और सच्चाई दोनों यीशु के साथ आई. अनुग्रह अनुग्रह हम सुनते हैं, लेकिन अनुग्रह खास में क्या है? अनुग्रह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है. पवित्र आत्मा का दूसरा नाम हम देख लिया कल, सच्चाई का आत्मा और सत्य के आत्मा. और हिब्राई के 10 में लिखा है पवित्र आत्मा अनुग्रह के आत्मा है. अनुग्रह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य. लेकिन सामर्थ्य सत्य के बिना नहीं चलते. अगर मेरे जीवन में, पास्टर एरिक के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, लेकिन जीवन में सत्य नहीं है, तो एक दिन वो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा. सैमसन के जैसे, ईसो के जैसे, सौल राजा के जैसे. क्योंकि उन लोगों के जीवन में क्या नहीं था? देयर वाज नो ट्रूथ.
उनके जीवन में सच्चाई नहीं.
दैट इज व्हाट ग्रेस इज गिवन फॉर. व्हाट इज गेयर द ग्रेस गिवन फॉर?
अनुग्रह क्या के लिए दिया जाता है?
आई एम सेव्ड थ्रू ग्रेस.
मैं अनुग्रह के द्वारा.
एंड यस्टरडे वी सॉ आई एम सेव्ड बाय ट्रूथ.
और कल हम देखेंगे सच्चाई से हम बचाए.
व्हेन देयर इज नो ट्रूथ,
जब सच्चाई नहीं है,
grace is not needed.
अनुग्रह की कोई जरूरत नहीं है.
Grace is to keep truth.
अनुग्रह दिया गया है कि आप सच्चाई को
रखें. हम ऐसे हिंदी में तो आसान, ऐसे बोलते उदाहरण के रूप में, रोटी और सब्जी. सब्जी क्या के लिए? रोटी खाने के लिए ना. अगर रोटी नहीं है तो सब्जी से क्या करेगा? सब्जी क्या के लिए? रोटी खाने के लिए. अनुग्रह क्या के लिए? सत्य रखने के लिए. इसलिए वचन में लिखा है यीशु अनुग्रह और सत्य लेकर आए. व्हाट यू आर लर्निंग हियर टुडे, व्हाट वी आर टीचिंग यू इज द ट्रूथ्स ऑफ गॉड्स वर्ड.
जो आज जो सिद्धांत आपको सिखाया जा रहा है, वो वचन के अलग अलग सच्चाई को सिखाया जा रहा
है. इट विल स्केयर यू.
ये आपको डरा सकता है.
हाउ डू आई कीप दिस?
मैं कैसे इसको संभालता हूं?
दैट्स वेयर ग्रेस कम्स.
वहां पे अनुग्रह आता है.
दैट्स वेयर ग्रेस कम्स.
वहां पे अनुग्रह आता है.
एंड यू आस्क एंड रिसीव ग्रेस.
और आप मांगिए और आप.
That's why God's throne room now, it is not called the throne room of judgment. न्याय
का सिंहासन नहीं कहा जा रहा
है अभी, एक दिन वो न्याय का सिंहासन हो जाएगा, लेकिन अभी उसका नाम क्या है? अनुग्रह के सिंहासन। हिब्राय के 4:16 में ऐसे लिखा है, 4:16 इन द बुक ऑफ हिब्रूज इट इज रिटन, देयरफॉर लेट अस कम बोल्डली अनटू द थ्रोन रूम ऑफ ग्रेस।
इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के,
अनुग्रह के सिंहासन कैसे आएगा?
कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए,
अनुग्रह पाए, दया हो। पहले क्या है? वी मे ऑब्टेन मर्सी। व्हाई मर्सी? बिकॉज वी डिडंट कीप द ट्रूथ।
पहले हमें दया की जरूरत है, दया क्यों? क्योंकि हम लोग सच्चाई नहीं रख पाए।
वी डिडंट नो द ट्रूथ, वी डिडंट कीप द ट्रूथ, सो वी नीड मर्सी। व्हाट आई टेल इज, इफ एरिक्स लाइफ इज नॉट बेस्ड ऑन ट्रूथ, देन हिज लाइफ इज अ लाइ।
जो पास्टर कह रहे हैं कि अगर मेरा जीवन सच्चाई का आधारित नहीं है तो मेरा पूरा जीवन एक झूठ बन गया।
झूठ बन गया। आवर लाइफ वॉज अ लाई।
हमारा पूरा जीवन झूठ था।
जीसस लाइफ इज ट्रूथ।
यीशु मसीह का जीवन ही सच।
सो ही इज चेंजिंग आवर लाइफ टू हिज लाइफ।
वो हमें बदलते जा रहे हैं कि हम उनका जीवन बने,
सो दैट वी बिकम ट्रू,
ताकि हम सच्चे।
दैट इज जीसस नेम, द बुक ऑफ रेवलेशन। He who is true and faithful. सच्चा और विश्वास योग्य। अगर सच्चा नहीं है तो विश्वास योग्य नहीं हो सकते। First I need to know truth.
पहले मुझे सच्चा होना।
Then only I can be faithful to truth.
तभी मैं सच्चाई के प्रति सच्चा
होता। Otherwise I'll be faithful to a lie.
नहीं तो मैं झूठ के प्रति सच्चा।
ये माफिया गुंडा लोग का गैंग है ना, उन लोग भी बहुत विश्वास योग्य है अपने सर्कल में, लेकिन सच्चाई नहीं है उधर।
एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य है।
विश्वास योग्य किसके? चोरी करने के लिए। और चोरी करने के बाद एक को पकड़ेगा तो बाकी सब मुख बंद करेगा, नहीं बोलेगा कौन कौन है गैंग में। विश्वास योग्य है उन लोग, लेकिन सच्चाई नहीं है। गॉड वॉन्ट्स अस टू बी ट्रू एंड फेथफुल।
परमेश्वर चाहते हैं कि हम सच्चे भी हो और विश्वास योग्य।
फेथफुल टू ट्रूथ।
विश्वास
स्कूल कॉलेज में बहुत सारे बच्चे लोग फेथफुल है, सच्चाई नहीं है।
स्कूल में बहुत लोग विश्वास योग्य हैं।
एक को पकड़ेगा टीचर, आज क्लास में हु डिस्टर्ब, टीचर नहीं था क्लास में, हु डिस्टर्ब? डैनियल।
डैनियल आज क्लास में कौन बदमाशी किया?
नॉट मी।
मैंने?
हु डिड?
कौन किया?
आई डोंट नो। बोलते हैं ना सर, You are faithful to your gang. You are not faithful to the truth. That's what children do in the house, in the college, in the school. They are faithful, but they are not true. You have to be faithful to the truth. That's what Jesus came with. Grace and truth. And scripture says, come boldly to the throne room of grace. First, I need mercy. I need mercy. Lord, this was your truth. This is where I am. Lord, I need mercy. I should have kept the truth. I didn't know it. I didn't seek it. I didn't keep it. Ignorance is not accepted in the kingdom. It is not accepted in the court of law. Eric is driving. Traffic police caught him. No license? No, license hai, no insurance?
Insurance nahi.
No pollution certificate?
Pollution certificate
nahi. He is at the thana or at the court.
Kacheri mein ya thana mein.
They will ask him, where is your insurance? Where is your pollution certificate?
Pollution certificate.
He will say, I didn't know.
अगर मैं तुम मुझे मालूम
है। The गाड़ी कैसे मिला? License है? License कैसे मिला? जब license मिला, गाड़ी खरीदा, उसने नहीं बोला आपको क्या क्या चाहिए? मैं नहीं सुना। It doesn't work. Ignorance doesn't work. Even if I don't know the law works for me or against me.
चाहे आप व्यवस्था के विषय में ज्ञान या अज्ञान हो, वो व्यवस्था आपके लिए या आपके विषय।
Whether I know the truth or I don't know the truth, truth will work for me or truth will work against me.
अगर आप सच्चाई में जानते हो या ना, वो या तो आपके लिए काम करेगा या सच्चाई।
That is the nature of truth.
वो सच्चाई का ही गुण है।
So God says, there is power.
सामर्थ्य है।
there is power. But you need truth.
लेकिन आपको सच्चाई की
जरूरत है. One of the truths for young people to handle power when it comes is, bear the yoke in the days of your youth.
और एक सच्चाई जिसकी आपको जरूरत है ताकि आप सामर्थ्य को सह सके जब वो आपको कराएगा वो है कि आप जवानी की तरह युवक हो.
Because as the burden increases,
जैसे बोझ बढ़ेगा,
burden increases,
बोझ बढ़ता है.
You will realize the yoke you bore in the youth helps to carry the burden.
तब आप समझेंगे जो जुआ आप जवानी में उठाना सीखे थे अब आपको मदद कर रहा है वो उठाने.
You see, I grew up in a Catholic family. We were not believers. We never knew Christ. Never went to church. Never read the Bible.
देखिए मैंने क्या कहा पास्टर बोला अपने बारे में वो एक ऐसे परिवार में बड़े हुए वो कभी प्रभु को जाने नहीं चर्च नहीं गए बाइबल नहीं पढ़े.
I grew up in another country.
वो एक दूसरा देश में पढ़े.
My father was a principal. Mom was a teacher.
उनके पिता एक प्रिंसिपल थे माँ टीचर थी.
One thing he taught me to do as a child was read as much as you want.
एक चीज जो उनके पिता उसे सिखाए कि पढ़ो पढ़ो जितना पढ़ना है पढ़ो.
Never the Bible, nothing about the Bible.
बाइबल कभी नहीं, बाइबल के बारे में कुछ नहीं.
But I read all through my life.
लेकिन अपने पूरे जिंदगी भर पास्टर पढ़ते गए.
And I could read and read and read and read for hours.
और पढ़ सकते थे घंटों घंटों के लिए पढ़ सकते थे.
That's a discipline.
वो एक अनुशासन.
It's not easy. Because I learned in childhood, even today I can read for hours.
क्योंकि ये आदत पास्टर ने बालपन में सीख ली तो आज भी घंटों घंटों तक पढ़ सकता है.
Those who haven't learned to read, now when you are older, try to read 5 minutes, 10 minutes. You put your book down because you don't have the discipline of reading.
आप में से जो लोग नहीं सीखे थे ऐसे पढ़ने पढ़ना कला आज आप पढ़ने कोशिश करते हैं 5 मिनट की बात करते हैं.
Many things are learned only when you are young.
बहुत सारी चीज आप जवानी में नहीं सीख सकते.
There you need to put that yoke.
वहां पर ही आपको जुआ उठाना
है. Do that.
और करना.
And if you have wise parents, it's a blessing.
और अगर if you have
wise parents, it's a blessing.
आपके पास अगर अच्छे बुद्धिमान माता पिता है तो बहुत ही अच्छा.
See, speaking is a gift.
देखिए बोलना एक कला है.
Reading is a discipline.
लेकिन पढ़ना वो एक अनुशासन है.
If I don't have the discipline of reading,
अगर मेरे पास पढ़ने का अनुशासन नहीं,
then I will struggle to preach.
तो बहुत संघर्ष होगा मेरे लिए प्रचार करना.
Struggle to preach.
संघर्ष होगा प्रचार.
If you have to preach for 45 minutes,
अगर 45 मिनट तक
you have to prepare for 45 days.
हमको 45 दिन तक पढ़ना.
Because you don't have the habit, the discipline.
क्योंकि आप आपके पास वो आदत नहीं है, वो अनुशासन नहीं है.
A week ago, I was in Sikkim.
एक हफ्ता पहले मैं सिक्किम में.
I had 10 days meeting.
10 दिन का मीटिंग था.
I preached for 50 hours in Nepali.
50 घंटा मैं नेपाली में प्रचार किया.
I didn't have to read.
मुझे पढ़ना नहीं था.
Because I've been reading all my life.
पूरा जिंदगी भर पढ़ रहा था.
Burden was very easy.
वो बोझ हल्का था.
And they were not children.
और वो लोग बच्चे नहीं थे.
They were all senior pastors, elders, deacons, because it was a church convention.
वो लोग सब कलीसिया के प्राचीन थे, सीनियर पास्टर्स थे, क्योंकि वो एक चर्च का बड़ा सा.
100 churches came together.
100 कलीसिया एक साथ आए.
But you know why that burden was light?
लेकिन आपको मालूम क्यों वो बोझ हल्का था?
Because when I was young, my father put a yoke on my neck.
क्योंकि जब मैं एक बालक था उस समय मेरा पिता मेरे ऊपर एक युवा होता था.
He didn't know what he was doing. He's dead and gone. He didn't know what he was doing. But because I learned one thing in my life to bear that yoke, it became a blessing today. The burden doesn't matter.
लेकिन क्योंकि मैं जवानी में वो एक जुआ उठाना सीख लिया तो आज ये इतना बड़ा बोझ मेरे हल्का पता चला.
You know, this is a principle in the kingdom.
ये परमेश्वर के राज्य में एक सिद्धांत है.
Work is not your enemy.
काम आपका दुश्मन नहीं.
Nobody has died because they worked. Lot of people have died because they didn't work.
कोई भी मरा नहीं है मेहनत करके, बहुत लोग मरे हैं क्योंकि वो काम नहीं किया.
Lot of young people think about work as their enemy.
बहुत लोग सोचते हैं कि काम उनका दुश्मन है.
दुश्मन नहीं है, मित्र है. Learn to work hard.
सीखिए मेहनत करना.
Learn to work hard. Learn to work hard. It's a discipline. In Genesis
2:15, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसका वो उसमें काम करे.
उसमें
काम करे.
हाँ, इंसान पाप में गिरने के आगे काम था. He put Adam there not to relax. He put Adam there to work. He created a place, he planted provision, put man there to work before the fall. Remember, work is part of God's plan for us. Listen to what Jesus says in John 5 and verse 17. अब तक पिता क्या कर रहे, अब तक
काम
करता है
और मैं भी काम करता हूँ,
मैं भी काम करता हूँ. द फादर इज वर्किंग, द सन इज वर्किंग, द पीपल आर नॉट वर्किंग.
पिता काम करता है, पुत्र काम करता है, लेकिन लोग नहीं काम करते.
हाँ, रिमेम्बर, अंडरस्टैंड द किंगडम,
राज्य को समझिए और याद रखिए.
वर्किंग, लर्निंग द एथिक्स ऑफ वर्किंग हार्ड इज अ डिसिप्लिन.
मेहनती बनने का सिद्धांत को सीखना एक अनुशासन है.
लूक 19 वर्स 13.
लूक का 19 का 13. और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरे दी और उनको और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना.
Occupy till I come.
मेरे आने तक लेन देन करना.
When Jesus comes,
जब
some places it will be night. Two will be in the bed. One will be taken. Some places it will be light. Two will be. Working. Occupy till I come. When I am coming, let me find you working so that I can take you. Understand this. The principle of work in the kingdom. It is not like in the world. In the kingdom, work is a discipline. Matthew 25:21. We know this one.
उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है.
Well done.
धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास.
अच्छे और विश्वास किसके बारे में बोल रहे, काम के बारे में बोल रहे. अच्छे और विश्वास योग्य दास, और
तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा.
लेख देख लो, स्वर्ग में क्या हो रहे, काम और बढ़ रहे हैं. इफ यू डोंट लाइक वर्किंग ऑन अर्थ, हाउ विल यू लाइक वर्किंग इन हेवन? इफ यू डोंट एंजॉय वर्किंग इन अर्थ, how will you enjoy working in heaven? You see, now on earth, you get tired, your energy is limited, but you still work because you love the master. Then you go to heaven, you get a new body, nobody gets tired, and you love your master, and there is no time. But if you didn't learn to how to enjoy work here, will you enjoy work there? शरीर तो बदल गई, लेकिन प्राण वही प्राण है ना. अगर प्राण इधर नहीं बदला तो उधर जाकर क्या बदलेगा? प्रभु बोलेगा, शाबाश तो नहीं बोलेगा, विश्वास योग्य नहीं बोलेगा. बोलो, तुम तो इस धरती में तो काम नहीं किया, तुम इधर भी बैठो, क्योंकि उधर ही बैठा था, इधर भी बैठो, उधर भी बैठो. जो उधर काम किया उसको उधर भी काम मिलेगा, जो इधर बैठा उधर ही बैठ कर देखो. आनंद काल के लिए बैठो, थिंक अबाउट इट फॉर एवर एंड एवर. व्हाट?
हमेशा हमेशा के लिए, सदा.
यू डोंट वांट टू बी कॉट इन दैट ट्रैप.
That's
why last night we said, no, from Corinthians, do not look at the things that are temporary. Let's go that to 2 Corinthians chapter 4. Verse 16 to 18.
इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यदि भी हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश होता जाता है.
बाहरी मनुष्य नाश हो जाता, डोंट वरी अबाउट इट.
इसके बारे में मत सोचिए, चिंता मत कीजिए.
सबके
सबका.
सम ऑफ यू हैव सीन मी मेनी टाइम्स.
आप में से कई लोग मुझे बहुत बार देखे.
ईच टाइम आई गो माय हेयर इज वाइटर एंड वाइटर एंड वाइटर.
दूसरा साल जब मैं आ रहा हूं तो मेरा बाल और भी
ज्यादा. नो प्रॉब्लम. Even if you are young, outwardly you will perish. वापस घर में जाकर चेहरा सब सुसाबुन से धोते टाइम में, मेकअप सब निकालते टाइम में देखेगा मार्क है पूरा है, आउटर पर्सन इज पेरिशिंग. बट
लेकिन
इनवर्ड मैन इज बीइंग रिन्यूड.
हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता
है. नया हो जाता था इसे बीइंग रिन्यूड.
क्या नया हो रहा है?
Can be only renewed by the word and by the spirit. Because pran ke liye sirf vajan aur atma vajan ke upar kaam karte. Is it being renewed? Then it doesn't matter if your outward man is perishing. But if your outward man is perishing and your inward man is not being renewed, it's a very dangerous thing. And inward man is not being renewed. And verse
17.
That's how you should look at life now. All this yoga, discipline, it's all light affliction. Ahead there is an incredible weight of glory. Tera saal das aur के रूप में जोसेफ पोटिफर के घर में जेल धाना में था 13 साल, लेकिन उसके लिए वो 13 साल लाइट अफ्लिक्शन बिकॉज ही न्यू ग्लोरी वॉज वेटिंग,
क्योंकि वो जानता था कि भारी महिमा उसके लिए रुका हुआ.
और 18 में ऐसे बोल रहे हैं,
और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते
हैं. लुक एट थिंग्स दैट आर नॉट सीन.
अनदेखी वस्तुओं को ताकते रहिए.
Because things that are seen are temporal.
क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं अस्थाई हैं.
और things which are not seen are eternal.
और अनदेखी वस्तुएं अनंत और स्थाई हैं.
So even when you are looking here,
अगर आप इस समय भी देख रहे
हैं, living here,
यहाँ पे,
keep your eyes on the things that are coming.
आने वाली वस्तुओं के ऊपर ताकते.
There's an eternal kingdom coming.
एक अनंत राज्य आ रहा है.
So you're not even preparing for an exam here or a job here. You're preparing for a judgment there and a job there.
यानी कि आप यहाँ पे नौकरी के लिए कोई काम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं. आप वहाँ पे स्वर्ग राज्य में एक काम और एक नौकरी के लिए तैयारी.
एक न्याय और एक नौकरी के लिए. न्याय के बाद नौकरी मिलेगा उधर. वेल डन. इसके अर्थ क्या है? न्याय हो चुका है. वेल्डन. तुम्हारा धरती में तुम्हारा काम पूरा देखा, ईमानदारी था, कैरेक्टर था, प्रेम था, सब कुछ था. वेल्डन. अब 10 शहर ले लो, उसके लिए तैयार हो रहे. लेकिन काम अभी इधर किधर है? इधर है. वी आर प्रिपेयरिंग हियर फॉर अ जॉब देयर.
हमें यहां तैयार किया जा रहा है वहां के नौकरी के.
इधर काम के लिए क्या चाहिए? मार्क चाहिए. उधर काम के लिए क्या चाहिए? कैरेक्टर चाहिए,
चरित्र चाहिए.
इधर क्या चाहिए?
चाहिए
मार्क्स और सर्टिफिकेट चाहिए. उधर मार्क और सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. डू यू हैव द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट?
आपके पास मसीह का चरित्र है.
दैट्स ऑल दैट मैटर्स. इट्स नॉट मार्क्स.
यही मायने रखता है.
इट्स नॉट मार्क्स. आई विल शो यू अ पोर्शन. दिस इज फ्रॉम फर्स्ट पीटर.
पहला पत्र से हम लोग देखें
2:7.
सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वह तो बहुमूल्य.
टू फाइव.
दो का पांच.
सॉरी.
तुम भी आप जीवित पत्थर की नाई.
कैसे जीवित
पत्थर की?
पहला एक जीवित बलिदान होना पड़ेगा. जब एक जीवित बलिदान होते टाइम में परमेश्वर के हाथ में हम क्या होते? एक जीवित पत्थर होते. परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू करते. क्योंकि क्या बना रहे? परमेश्वर स्वर्ग में एक कलीसिया बना रहे, एक मंदिर बना रहे. मंदिर में हर व्यक्ति क्या होना पड़ेगा? एक पत्थर होना पड़ेगा. कैसे पत्थर है? जीवित पत्थर है. एंड गॉड इज वर्किंग ऑन आवर लाइफ. He's working on our lives. In Jeremiah 23 verse 29, Jeremiah 23:29.
यहोवा भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं
कैसा है अभी वजन हथौड़ा तो ऐसा लग रहा है तोड़ रहे अंदर. It's not my word like a hammer. The word in the hands of the Holy Spirit is like a hammer breaking us, shaping us, shaping us so that we can be a stone in His temple. Now this is all in the new covenant. Its symbol is there in the old covenant. 1 Kings chapter 6 and verse 7. Dekh lo. 1 Kings chapter 6 verse 7. Paila Raja, 6 ke saath. This is Suleiman ne ek mandir banaya. Sabse bada mandir Suleiman ne banaya. Uske baare mein likha hai.
Aur bante samay bhavan aise patharon ki ka banaya gaya jo wahan le aane se pehle गढ़ गढ़ ठीक किए गए थे और भवन के बनते समय हथौड़े वसूली और किसी प्रकार के लोहे और औजार का शब्द भी कभी नहीं सुनाई
दिया. कभी नहीं सुना. परमेश्वर का मंदिर सुलेमान का मंदिर जेरूसलेम में मुराया में बना रहे लेकिन पत्थर सब खनी में है. खनी में पूरा काम कर रहे. उधर जा मंदिर बना रहे मंदिर को उधर आवाज ही नहीं है. काम पूरा इधर चल रहे. इधर वो मिस्त्री ने काम पूरा कर इधर से वो पत्थर उठाकर क्या करेगा मंदिर में फिट करेगा. इधर आवाज ही नहीं है. आवाज सब खनी में है. स्वर्ग में आवाज नहीं है. आवाज सब इधर है. काम इधर चल रहे. सबके जीवन पर परमेश्वर को आत्मा चल रहे. उधर वो दिन फिट होना पड़ेगा. अगर फिट नहीं होगा तो मंदिर से बाहर. एक पत्थर इधर से लेकर मिस्त्री उधर लेकर जाते हैं मंदिर में फिट नहीं हो गया तो वो पत्थर बाहर. मंदिर का भाग नहीं हुआ. काम इधर फिटिंग उधर. गॉड इज बिल्डिंग अ टेम्पल.
परमेश्वर एक मंदिर बना रहे हैं.
अंडरस्टैंड हु वी आर.
समझिए आप कौन.
वी आर लिविंग स्टोन्स.
हम जीवित पत्थर.
गॉड इज बिल्डिंग अ स्पिरिचुअल हाउस.
परमेश्वर एक आत्मिक भवन.
वर्क इज नॉट इन हेवन.
काम वहां नहीं हो रहा है.
वर्क इज हियर. Solomon's temple was there in Jerusalem. Not a sound. No hammer, no axe, not a sound. All the sound was somewhere else. Wonderful masons and architects are working. When the stone is taken there, it just fits into the house.
बस हर एक जगह में जाके घुस गया.
These were dead stones.
ये सब मरा हुआ पत्थर था.
We are living stones.
हम जीवित पत्थर.
इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कैसे अपने अपने शरीर को परमेश्वर के आत्मे जीवित बलिदान के रूप में दे दो क्या वो हमारे ऊपर काम करे. एवरी डे
हर दिन.
We have to give ourselves.
हमें अपने आप को सौंपना है.
Work on me, Lord.
Work on me, Lord.
That's how Joseph surrendered himself into God's hand.
इसी तरीके से यूसुफ अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित किया.
How do you know?
आपको कैसे मालूम?
He obeyed his father.
कि वो अपना पिता का बात.
He obeyed his master.
वो अपना स्वामी का बात सुना.
He obeyed the prison warden.
वो अपना जो उसके ऊपर रखवाली कर रहा था कैदियों में उसका बात सुना.
He obeyed the Pharaoh. He always understood God was working on his life. He had 10 elder brothers. They wouldn't listen to anybody. So therefore they could not be seated on the throne. All Joseph could was save them and take care of them, but they could never reign.
यूसुफ बस उनको बचाया और उनको बस प्रबंध दिया लेकिन वो लोग कभी सिंहासन पर राज नहीं कर.
सो अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस टू बेयर अ योक इन द डेज ऑफ योर यूथ.
इसीलिए समझिए इसका क्या मतलब है कि आपको जवानी के समय में जुआ उठाना है.
That's what we saw in the book of Psalms.
God
sent a man ahead of them.
परमेश्वर एक व्यक्ति को उनके आगे भेजे.
They bound his feet with fetters and his neck with chains.
उसको चेन से और जंजीरों से उसके पैर और उसका गला को भारी कर दिया और बांध दिए.
कब तक देख लिए. We didn't look at that. कब तक. Psalm 105, right?
Yes.
मिला या या 19 कब तक
जब तक कि
जब तक कि
उसकी बात पूरी ना हो उस यहोवा का वचन उसे कसौटी पर
क्या उस यहोवा का वचन until the word of God has found its place in his life the word of God tested him
जब तक यहोवा का वचन उसकी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ तब तक कसौटी पर उसे कसा गया
वर्ड ऑफ गॉड आज एक सुना बी डिसिप्लिन्ड इन योर वर्क Until that word fulfills in your life, God will keep hammering you about work, work, work. He won't tell you anything else. Because he's shaping us. Don't look at this life. Don't look at the seen things. You will lose your focus. Our focus is there. Eternity is going to begin. It doesn't matter what happens to me in this world. I have to be approved of God one day. God has to approve me. And it is only possible by faith. Faith comes from hearing. And hearing from the word of God. So faith is keeping your eyes on the unseen. And one of the things young people have to be disciplined is the way you work. Don't shy away from work. You are from different churches. Just don't go to Sunday on church and sit there. Don't do that. Go ahead of time. And you look, there will be always work to do. Always work to do. You see, in my church, I see new people, young people coming. One thing that I notice, because we don't have a building, so we rent a building. After our service, there's another service. And I will always see some of the new young ones who are coming after service is over. They are always there helping to move out, though they came for the first time. Two new ones have come. One will just sit there. Get up, go, eat refreshments and go while the other is helping around. Immediately you know two people are separated. One has learned to bear a yoke in his youth. And my eye is on him. Let us see how he goes. So that I can promote him. The other ones will go to different churches, sit, eat and go, sit, eat and go. They are never promoted by God because they are not faithful in that one thing. They don't look open their eyes and see, hey, there is a need, let me do it.
So,
God's children, exaltation comes from God. It's not from man. But God looks at how we hear and how we obey. So as young people have good habits which will help you all your life with the kingdom of God. Very good discipline. You don't have to sleep for 8 hours, 9 hours. It's a waste of time. Waste of time. See, if you are so upset about sleeping, when you go to heaven, tell God, let me sleep for 1 year, He will allow you. But here, wake up and do your work. Maybe He will wake you up after 10 years. But don't worry about that. Early in the morning, this is Jesus' habit. लेकिन यहाँ पे देखिए, and he prayed.
और दिन में,
and he prayed.
सुबह जल्दी उठके,
and he prayed. That was his habit.
ये उनका आदत था.
That should be our habit.
ये हमारा आदत है.
According to your time schedule. Now in the world, some people have day shift, night shift. I don't know. So according to your schedule, first thing when you wake up is spend time with God.
आपका दिन का शुरुआत के अनुसार आप पहला चीज परमेश्वर के साथ समय.
That was Jesus' discipline.
He
had a disciplined prayer life. It's not wake up and Facebook. When you wake up, your face should be in this book. Not on Facebook. You don't realize there is a God who sees these things. God met Saul of Tarsus on the road, Jesus met. Who are you, Lord?
Saul बोलता है कौन है तू प्रभु?
Jesus of Nazareth.
यीशु नासरी.
What will you have me do?
तू क्या चाहता है कि मैं करूं?
Go to the city, it will be told you.
वो शहर जाओ तुम्हें बताया जाएगा.
तो अंधा हो गया, दोस्तों ने हाथ पकड़कर शहर में लेकर गया. तीन दिन के बाद वजन में लिखा है परमेश्वर की आवाज अनानियास बोलकर एक साधारण व्यक्ति के पास आकर बोला, शहर में जाओ, सिद्ध बोलकर एक रास्ता है, उधर एक घर है, तार्सस का साउल उधर है, देखो वो प्रार्थना कर रहा है. परमेश्वर ने देखा, तीन दिन के अंदर वो प्रार्थना कर रहे हैं. God saw him and God gave him an answer. What will you do? What do you want me to do? Go to the city. It will be told you.
Yeah,
उसने क्या शहर में जाकर सोया? हाँ, परमेश्वर शहर जा बोला, मैं शहर गया. नहीं, वो शहर में जाकर दो तीन दिन फास्टिंग और प्रेयर में बसा. तीसरा दिन परमेश्वर का आवाज आया. Praying is a discipline.
प्रार्थना करना है.
It's a discipline. Learn that. Daniel ke baad mein likha hai, when the law was passed, you cannot pray for 30 days.
Daniel ke baare likha hai, jab wo niyam banaya gaya tha, 30 din tak prarthna koi
nahi. Vachan mein kya likha hai? Daniel ke 6:10. Kya likha hai? Udhar ek choti baat hai, wo dekhna padega. Ha, padh liye.
Jab Daniel ko malum hua ki us patra par hastakshar किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी ऊपरी चोटी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार,
अपने रीति के अनुसार. बाकी लोग थे उधर यहूदी, से उन लोग का रीति नहीं था, तो हुक्म आया ठीक है 30 दिन प्रार्थना, वो रीति नहीं. 30 दिन या 300 दिन उन लोगों के फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज दे हैव नो डिसिप्लिन ऑफ प्रेयर. बट स्क्रिप्चर सेज एज ही ऑलवेज डिड. From childhood, now he's an old man. He never broke the discipline of prayer. And Jesus never broke the discipline of prayer. If you look at all the people who are disciplined in prayer, you will see they learned that discipline when they were young. Praying is a discipline. It's a discipline. You can't learn it. You can't learn it at 60 years old. Because your body has already made habits. Sharir ka bhi apne ek jeevan hai. If that jeevan is very strong, it will not work. So learn these things. These are spiritual things. Learn these things when you are young. Learn the discipline of prayer. Learn the discipline of the word. Don't worry about understanding. Understanding God can give you. Reading is your part. That is your part. And as you get into the discipline of reading and obeying what you understand, God will start opening your understanding. Understand that. God looks at how you are. See, either he opens your eyes or he shuts your eyes. Look at Luke 24 verse 15 and 16. Yeshu mouth ke baad ji utha aur Emmaus ja rahe, do shishya bhi ja rahe.
Aur jab ve aapas mein baat cheet aur pooch taach kar rahe the, to Yeshu khud aakar unke saath ho liya.
Verse 16.
परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके।
यीशु ने क्या किया, उन लोगों की आंख बंद कर दी। यीशु उन लोगों के साथ ही है लेकिन उन लोग को यीशु को पहचान ना सकी क्योंकि यीशु आंख बंद करी। यीशु हमारा आंख बंद करेगा तो यीशु का उपस्थिति हमारे बीच में होगा। वी विल नेवर नो, नेवर नो। दैट्स व्हाई इन वन मीटिंग वन हियर्स फ्रॉम गॉड, रेस्ट डोंट हियर फ्रॉम गॉड बिकॉज गॉड शट देयर आइज।
कई बार बताएगी
Be very careful about these things. You're dealing with God. God doesn't reveal himself to everybody. He doesn't reveal himself to everybody. There could be a crowd, hundreds and thousands. Zacchaeus, come down. I'm coming to your house. Ignore the rest. You know his name? And I'm coming to your house. Be very careful. Jesus can be right with them. He closed their eyes.
Luke 24:45.
If God doesn't open my understanding, बाकी संसार की सभी पुस्तक पढ़कर समझ मिल सकते लेकिन ये पुस्तक नहीं हो सकते। गॉड हैज टू ओपन माय अंडरस्टैंडिंग।
इसके लिए परमेश्वर आपका समझ खोलना
है। ही कैन लॉक इट फॉर द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड स्टीफन हॉकिंस इन द वर्ल्ड एंड ओपन इट फॉर अ चाइल्ड।
ये बड़े बड़े स्टीफन हॉकिंस साइंटिस्ट के लिए वैज्ञानिक लोग के लिए परमेश्वर उनका समझ को ताला डाल सकते हैं लेकिन जो छोटा सा बच्चा है उसके लिए खोल सकते हैं।
हियर इज हाई प्रिस्ट,
ये है महायाजक यहाँ पे
Eli.
Eli.
Here is small boy Samuel.
Samuel.
And all are priests. सबको छोड़कर परमेश्वर Samuel. बालक इसने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, सिर्फ वो बालक सुना। Careful.
Yeah.
Careful. Because we have to hear from God.
क्योंकि हमें परमेश्वर से सुनना
है। Because He is everything. But He is watching.
और वो देख रहा है।
He is watching. Are you faithful in little things?
क्या
small things?
क्या छोटे चीजों में विश्वासी होंगे?
All things.
कम में विश्वासी होंगे हैं?
First thing He looks is how do you work?
पहले वो देख रहा है काम कैसा कर रहा है।
How do you work? I told yesterday, right? When Joseph is introduced in the Bible, the first thing you find him, he's working in his father's field.
जब यूसुफ का परिचय दिया जा रहा है बाइबल में पहला चीज हम देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो अपने पिता के मैदान में काम।
Not only that, he's working with his brothers.
वो अपने भाइयों के साथ काम।
But he came and told his father.
और वो आता है अपने पिता के पास।
Brothers are messing up your name.
मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, आपका नाम है।
Are you zealous for the name of God in your workplace?
आप अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर का नाम के लिए क्या आप जोश और उत्साह?
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
हे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र हो।
That's the beginning.
यहाँ से शुरुआत।
That's the beginning.
ये शुरुआत।
Work doesn't kill anybody.
मेहनत किसी को नहीं मारा।
Ecclesiastic 9:10.
जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। क्यों?
कैसे करना? कैसे करना काम? शक्ति भर। अगर चर्च में आगे आकर कोई नहीं है, पास्टर ने बोला डस्ट करो, ऐसे ऐसे कर नहीं जाना। शक्ति, मां ने बोला वो बाड़ा सब धोने के लिए बोला, ऐसे ऐसे नहीं करना। मैं छोटे क्लास 3 क्लास 4 में पिताजी के संग था, 4 में मेरा काम था उसका शू पॉलिश करना। एंड ही यूज्ड टू टेल मी,
और वो मुझे बोलते थे,
व्हेन यू फिनिश पॉलिशिंग माय शू,
जब मेरा जूता पॉलिश कर लेता
आई शुड बी एबल टू सी माय फेस ऑन
इट, मैं अपना चेहरा देखना चाहता
हूँ। ही वाज जस्ट टीचिंग मी थिंग्स,
वो बस मुझे सिखा रहे थे।
व्हेन यू वर्क समथिंग,
जब आप कुछ चीज काम,
इवन इट्स अ स्मॉल थिंग,
चाहे वो छोटा चीज ही काम,
डू इट विथ ऑल योर माइट,
शक्ति भर के
Do it with your all your mind. Paul will tell that to servants of God.
Paulus ye kahega daaso parmeshwar ke daaso.
When you come to studying the word,
jab वचन पढ़ने आते हो
वर्क हार्ड ऑन द वर्ड
वचन मेहनत से पढ़ो
एंड डिवाइड द वर्ड करेक्टली
सही सही वचन को समझो
यू नो दिस इज वेयर यू बिगिन
यहां से शुरुआत होता है
यू बिगिन बाय पॉलिशिंग योर फादर्स शूज हार्ड And you end up by dividing God's word correctly. You don't begin here. You begin there. And God is watching. All of you. Daddy says something, mother says something. Daddy says, when I come back, just wash my scooter. Ah, wash it like the way you never washed. That's what scripture is saying. Whatever your hand finds to do, do it with your all your might. Meaning, be good in what you do. Ek hoga, do hoga, lekin kaam usme uttam ho jaye. I told yesterday about David. David knew only two things in the beginning. Guitar vadana, dusra, gopher, no? He was excellent. You know why? Proverbs 22 verse 10. Yeah, 10. Are you sure?
Proverbs 22, 10 or what?
Okay, leave that. I got it wrong. Okay. Where it says a man who is excellent in work will stand before kings. Okay, I'll tell you in the afternoon. Okay. Where scriptures actually says if you're good in your work, one day you will stand before the king. Joseph was good in his work. One day he stood before the king.
और वो राजाओं के सामने
डैनियल वॉज गुड इन हिज वर्क
डैनियल अपने काम में उत्तम था
वन डे ही स्टूड बिफोर द किंग
और वो राजाओं के सामने
डेविड वॉज गुड इन हिज वर्क
दाऊद अपने काम में उत्तम था
वन डे ही स्टूड बिफोर द किंग
और राजाओं के सामने सम्मुख
इफ वी आर गुड इन अवर वर्क
अगर हम अपने काम में
वन डे वी विल स्टैंड बिफोर आवर किंग
हम लोग अपने राजा के सामने
एंड इट डजंट मैटर व्हाट द वर्क इज
और ये कोई मतलब नहीं रखता कि आप कौन से
काम देयर इज नो वर्क व्हिच इज स्मॉल और बिग
ऐसा कोई काम नहीं परमेश्वर के सामने छोटा
डेविड वाज अ गुड शेपर्ड
दाऊद एक अच्छा भला
जोसेफ वाज अ गुड शेपर्ड
यूसुफ भी एक अच्छा था
ही वाज अ गुड स्लेव
वो एक अच्छा दास था
ही वाज अ गुड प्रिजनर
दास था अच्छा कैदी था
यू सी व्हाट दे वर गुड एट
आप देख रहे हैं कि ये कैसे कैसे काम में
इट डजंट से जोसेफ वाज अ गुड मैनेजर
ये नहीं लिखा है कि वो एक अच्छा भंडारी था
स्लेव
वो एक दास
एक्सेलेंट वर्कर
उत्तम
एंड ही स्टूड बिफोर किंग्स
वो राजा के सामने
था दिस इज व्हाई ऑल दिस यू हैव टू गेट इट व्हेन यू आर यंग सम ऑफ यू आर नॉट यंग ऑलरेडी यू आर ओल्ड
आप में से कुछ लोग
यू आर गेटिंग ओल्डर
बूढ़े हो गए
हैबिट्स हैव सेट
आपके आदत बन चुके हैं
एंड यू हैव टू ब्रेक दोस हैबिट्स व्हिच आर नॉट गॉडली
और अब आपको वो आदतों को तोड़ना पड़ेगा जो धार्मिक नहीं
है बिकॉज एज वी ग्रो ओल्डर
क्योंकि जैसे आप और भी उम्र में बढ़ रहे हैं
द हैबिट्स इन अवर फ्लैश ऑल्सो आर ग्रोइंग ओल्डर
आपकी शारीरिक आदत और भी ज्यादा बैठ जा रहे हैं और भी ज्यादा स्थापित हो जा रहे हैं
यू नो एज अ पास्टर
एक पासवान होने के नाते
आई हैव सीन पीपल इन ए कोमा इन द आईसीयू
मैं देखा हूं लोग को कोमा में आईसीयू में
कोमा यू नो व्हाट अ कोमा इज राइट अनकॉन्शियस
वो लोग देख रहे हैं वो लोग समझ
लेकिन जब शरीर में सेंसस में था आदत ऐसा हो गया आईसीयू में प्योर ट्यूब सब लगाया हुए कोमा में है लेकिन हाथ ऐसे चल रहे कारण
की सिगरेट फूंकने का आदत हो गया
आदत हो गया योर विल
आपका इच्छा
बेंड टुवर्ड्स द फ्लैश यू नो द ट्रूथ सत्य मालूम है सच्चाई मालूम है लेकिन वो सच्चाई मानने के लिए इच्छा नहीं है क्योंकि इच्छा शरीर के साइड में गया बिकॉज यू नेवर पुट अ योक इन द डेज ऑफ योर यूथ
जवानी के समय आप एक युवा को नहीं उठाया
सोलोमन न्यू
सुलेमान
सॉरी सोलोमन न्यू
सुलेमान कुमार
सैमसन न्यू
सैमसन
दे ऑल न्यू व्हाट वाज ट्रू
सब जानते थे
व्हाट दे वर डिमांडेड
क्या इनसे मांग रहे थे
स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग एंड फर्दर
आगे बढ़े
सैमसन्स एंड इज देयर
सैमसन का
हेड seven locks.
उसके जो सात लट्ठे थे.
It's a sign of separation.
उसका अलगाव पे एक चिन्ह था.
But his head is on Dalila's lap.
लेकिन दलाइला का गोद में है उसका सिर.
सोच लिए मन में. Separation, the sign is there, but that head with the separation is on the lap of Dalila.
अलगाव का चिन्ह तो है.
Where has your separation taken you? I called you in your mother's womb. Oh Samson, I set you apart. And I told you my rules. Never cut your hair. Wear it in seven locks. So that everybody who sees you will know you belong to God. You are separated unto God. But when his end comes, did you see Samson? That head with the seven locks is on Dalila's lap. Why? Because he had no strength not to say no to his flesh. These are all truths in the Bible. Old and new. Old Testament stories are given. New Testament doctrine is given. Galatians 5, 16 and
17. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में.
शरीर किसके विरोध में? किसके शरीर? हमारे शरीर आत्मा के मित्र नहीं, आत्मा के शत्रु है. मेरा सबसे बड़ा शत्रु शैतान नहीं है, संसार नहीं, मेरा ही शरीर है. क्योंकि शरीर अंदर है, बाकी शत्रु सब बाहर है. मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मेरा शरीर है. क्योंकि मेरा शरीर किसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं? परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध में. मुझको चाहिए उठकर प्रार्थना करना, लेकिन शरीर नहीं उठेगा. मेरा मन बोल रहे पढ़ो, लेकिन शरीर नहीं मानूंगा. मेरे शरीर मन आत्मा बोल रहे फास्टिंग करो, लेकिन शरीर नहीं मान रहे. शरीर क्या हो गया? आत्मा का शत्रु बन गया. द फ्लैश लस्ट अगेंस्ट द स्पिरिट एंड द स्पिरिट अगेंस्ट द फ्लैश, दे आर कॉन्ट्ररी टू वन अनदर.
शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है.
And you know what it says in Romans 8, 13 and
14?
13-14 sang padna, sirf 14 nahi padna. Log sab 14 malum hai, 13 malum nahi hai.
Kyunki yadi tum sharir ke anusar din kaatoge,
to maroge. Ye kiske liye likha hai? अविश्वासी के लिए नहीं, ये सब विश्वासी के लिए लिखा है. रोमिया गलेतियर सब अविश्वासी के लिए नहीं, कलीसिया में बसते आत्मा से भरे हुए लोग के लिए लिखा है. अगर शरीर में चलेगा तो क्या हो जाएगा? तुम मर जाओगे. और यदि आत्मा से
देह की क्रियाओं को मारोगे
तो जीवित रहोगे. Those who took the yoke, and they have learned the discipline, and they're using the power of the Spirit to put to death the works of the flesh. You know what verse 14 says?
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं.
वही है परमेश्वर के पुत्र. लोग को 13 मालूम है, 14 मालूम है, सब बोलेगा मैं परमेश्वर का पुत्र है, आत्मा चला रहे. लेकिन आत्मा कैसे चला रहे? सैमसन को भी आत्मा चलाया, लेकिन वो शरीर की इच्छा में गया. साउल के ऊपर भी आत्मा था, लेकिन वो अंत में शरीर की इच्छा में गया. आत्मा उसका लाश सब चलाने के लिए उन लोग मंजूरी नहीं दी. दे डिडंट. That's what God is talking about. Is the Spirit leading you? How do you know?
परमेश्वर इसी बात के विषय में बात कर रहे हैं. क्या आत्मा आपको चला रहा है? आपको कैसे पता चलेगा?
ये दर्शन की बात नहीं है, असल जीवन की बात है. दर्शन मिला, सबको मिला दर्शन. जोसेफ को भी नहीं दर्शन मिला, लेकिन जब पोटिफर के श्रीमती आकर बोल रोज बोल रहे मेरे आकर सो जा, उसने बोला मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि जीवित परमेश्वर है. वो भी युवा था. उसे रोकने के लिए कोई नहीं, अपने मालिक नहीं बोल रहे, ये रोकने के लिए कोई नहीं है. वो भी सोच सकता, अरे मालिक का श्रीमती है, अब तो इससे उसके साथ सोएगा तो मैं उसका घर भी कब्जा कर सकता है, ये मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, ऐसे नहीं सोचा। उसने बोला मेरे परमेश्वर, उसने आत्मा के सामर्थ्य शरीर के लालच के ऊपर जीता। ये सब टेस्ट है, पहला काम का, कैसे ये मेहनत कर रहे, कैसे ये काम कर रहे, वो टेस्ट पास हो गया उसको सबसे बड़ा मालिक बनाया घर में। सेकंड टेस्ट आ रहे, तो काम का टेस्ट पास हो गया, अभी शरीर का नेक्स्ट टेस्ट आ रहे, कैन यू रेसिस्ट टेम्पटेशन।
क्या आप परीक्षा,
परीक्षा जीवन में कभी भी नहीं रोकते, एक टेस्ट पास आओ परमेश्वर नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट लेकर आते, क्योंकि एक सिंहासन रखा है उधर हमारे लिए, ये टेस्ट पूरा इधर पास होना पड़ेगा। एग्जाम नहीं, एग्जाम हमारा शत्रु नहीं है, परीक्षा हमारा मित्र है, क्योंकि परीक्षा पास हो गएगा तो प्रमोशन मिल जाएगा। क्लास 9 से 10 जाने के लिए एक परीक्षा होगा, वो परीक्षा हमारा शत्रु नहीं है, हमारा मित्र है। वो परीक्षा पास हो जाएगा तो हमको मालूम है, स्कूल से कॉलेज जाते टाइम में स्कूल में 5 लाख सीट होगा आधा झारखंड में, लेकिन कॉलेज जाते टाइम में 2 लाख सीट ही होते, सीट कम हो रहे। ग्रेजुएशन से पीजी जाते टाइम में ग्रेजुएशन में 2 लाख था, पीजी के लिए 1 लाख, पीजी से पीएचडी जाते टाइम में उधर 25,000 ही है, सीट कम हो रहे हैं, नहीं बढ़ रहे। अंत में हम प्रकाशित के वाक्य पढ़ते पढ़ते टाइम में लिखा है, वो पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के मेमने के साथ सिर्फ एक लाख 44,000 लोग ही है, कितना करोड़ों 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 विश्वासी स्वर्ग में है, लेकिन लास्ट तक कितने पहुंचा, 1,44,000 टेस्ट पास होकर पास होकर पास होकर पास होकर पास होकर लास्ट देख लिया, नंबर कम हो रहे, क्या हो, बीच 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 में टेस्ट फेल हो रहे। उद्धार तो है, परमेश्वर के पुत्र है, याकूब को भी 12 पुत्र था लेकिन एक की सिंहासन मिला, दाऊद को बहुत सारे बच्चे था एक को सिंहासन मिला, परमेश्वर सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन सिंहासन में आने के लिए विजय प्राप्त होना पड़ेगा, काम का टेस्ट पास होना पड़ेगा, टेम्पटेशन
परीक्षा,
परीक्षा का टेस्ट पास होना पड़ेगा। वो पास हो गया, पास होते कैसे होते, संसार के जैसे प्रमोशन नहीं मिला, घर से जेल में हाला, वो प्रमोशन है। सच्चाई के वगैरह से आप जेल में जाएगा तो परमेश्वर के आंख में वो प्रमोशन है, डिमोशन नहीं है, जेल में गया। जो सच्चाई के साथ मिलावट कर अपने काम करने जगह में प्रमोशन मिलते, परमेश्वर के आंख में वो गिर गया, जोसेफ नहीं गिरा, वो प्रमोशन मिला, कहां गया, जेल खाने में गया, उधर भी प्रमोशन मिला, सबके ऊपर रखा उसे। उधर क्या लिखा है, राजा को फरो के पैलेस से महल से 2 लोग प्रसन्न में है, बटलर एंड बेकर, ना 2 लोग है उधर। अब उसके मालिक कौन हो गया, युवा जोसेफ हो गया। कारण क्यों, परमेश्वर का तरीका है, तुम एक दिन महल में शासन करने के लिए बुलाया है, ये दोनों महल से लेकर आए, इन लोग से महल के शिक्षा पूरा तुम सीख लो। देख लिया, ट्यूशन मास्टर रखा प्रिसन में, महल में एक दिन जाने वाला के लिए, महल का संस्कृति अलग है, महल के भाषा अलग है, महल के सब कुछ अलग है, वो जेल में नहीं सीख सकता, इसलिए परमेश्वर का पुत्र जेल में है, 2 शिक्षक को भेजा, उन लोग से सीखा महल में कैसे काम करने के लिए। डू यू सी गॉड अपॉर्चुनिटीज फॉर हिज चिल्ड्रन हु आर ओबीडियंट।
आप देखिए कैसे परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कैसे अवसर दे
रहे हैं। इज डेविड अ शेपर्ड, चरवा है, लेकिन उसका स्थान कहां है, एक दिन महल में जाकर सिंहासन में बैठने के लिए। इसलिए वचन में लिखा है, जब आत्मा दाऊद के ऊपर आया, पवित्र आत्मा साउल से और दुष्ट आत्मा आया, दुष्ट आत्मा से बहुत सारे गीत बजाने वाले महल में है, लेकिन एक सेवक ने बोला, उधर जंगली स्थान में एक लड़का है दाऊद बोलते, वो बजाते हैं अच्छे से, जब दाऊद महल में आया वो गीत बजा रहे, दुष्ट आत्मा चला है। क्यों, क्योंकि दाऊद महल में आकर महल के तरीका सीख सके, क्योंकि एक दिन वो राजा बन जाएगी। परमेश्वर ओपन द डोर,
परमेश्वर
दैट्स हाउ गॉड वर्क्स।
That's how God works. God is saying, be faithful. In your home, in your class, in your workplace, in your church. Don't look at how small it is. Just be faithful. Because if you're faithful in little things, you'll be faithful in big things. Big things God will handle. But to handle that burden, wear a yoke in the days of your youth. Have these disciplines in your life. Have your disciplines in your life. Stay prayed up. Pray. Work. Be careful about what you listen to. Who you listen to. What you listen to. Careful what you watch. All this get in. And it affects your thinking. And then when you look at life, you will not be able to see correctly. You look at the temporal. You are not able to see the eternal. Israel so Goliath.
Israel Goliath ko dekha.
Sabne dar gaya. Sab dar gaya. Chota balak Daud bhi dekh liya Goliath. Usne nahi dara. Ye bol rahe ye kaun hai? Uncircumcised Philistine. Katna rahe the Philistine ye kaun hai? Jeevit Parmeshwar. Uska aankh kahan pe hai? Jeevit Parmeshwar par hai. Dekh liya wo alag se dekha. समस्या अलग से आंख से देख लिया क्योंकि उसका आंख कहां पर है जीवित परमेश्वर पर है. हाउ डू यू सी हाउ डू यू सी एग्जाम इज वेरी हार्ड. एग्जाम इज वेरी हार्ड. क्वेश्चन पेपर इज वेरी टफ.
क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल.
बट आई स्टडी.
मैं पढ़ा.
आई वर्क.
मैंने खटा.
आई वॉज ऑनेस्ट.
मैं ईमानदार.
आई विल राइट व्हाट आई नो
जो मालूम है
ऑनेस्टली.
ईमानदारी से.
Give the result into God's hands. That's all. He will take care of you. That confidence you should have. Your confidence shouldn't be in the marks. Your confidence is assured that I have done my part. Carmel Parvat ke upar Elijah last mein wahi bol rahe sab kuch kiya uski baad sab ab niche hatkar bol rahe Abraham Isaac aur Jacob ke parmeshwar jo kuch main idhar kiya hai sab aapke wajan ke ansar kiya hai ab prove yourself. अपने मैंने जो आपने बोला वो सब किया. ईमानदारी से काम करो बोला काम किया. हार्ड वर्क. आई हैव वर्कड हार्ड. आई हैव बीन ऑनेस्ट. आई हैव डन इट ऑल लॉर्ड. रिजल्ट इज नॉट इन माय हैंड्स.
प्रभु आपने कहा मेहनत से करो काम का जीवन हम किए प्रभु सब कुछ किए मेहनत से किए लेकिन प्रभु अंत में ये सब कुछ आपके हाथों में है. प्रतिफल आपके हाथों में.
प्रतिफल. प्रूव योरसेल्फ. God proved himself. Scripture says fire came down. That's all God is saying. You just, you can't prove yourself. God will prove himself. All you need to be is faithful with what you know. And when you're faithful, he will increase your knowledge. Be faithful in what you know. Increase in your knowledge. Increase in your knowledge. Grace and truth. Grace. Grow in the grace of Jesus Christ. What does Jude say? Grow in the grace of Jesus Christ and in the knowledge of God. That is truth. Dono mein badh rahe. अनुग्रह में सत्य में. अनुग्रह में सत्य में. तेरे लोग ऐसे क्या हो गया सत्य में बढ़ गया लेकिन लेकिन जीवन में अनुग्रह नहीं. इसे सत्य देखते देखते डिप्रेशन में हो गए. बाकी लोग क्या अनुग्रह में बढ़ गए लेकिन सत्य नहीं. सैमसन के जैसे दीवार सब उठा सकते लेकिन अपने शरीर को कंट्रोल में नहीं रख सकते. फिलिस्तीन के शहर में जाकर पूरा दीवार उठाकर गेट पूरा उठाकर चल रहे लेकिन आपने उंगली के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है. आंख के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है. देख लिया दैट वी विल. इज द टाइम फॉर लंच. या नाउ वी विल हैव लंच एंड वी विल कम बैक.
How much time should we give them for lunch? I'll give you 45 minutes, okay?
Lunch aaj tayar hai. Sorry, kal tayar nahi tha, lekin aaj tayar
hai. Aaj tayar hai. Kal thoda late ho gaya. Okay? Before we eat lunch, kal ka announcement kya tha lunch ke bare mein? Vajan se, pet, khana, pet ke liye, aur pet, khana ke liye. Vajan dekh dikhau. 1 Corinthians 6:13. Vajan padhu. Phir ek baar. 6:13.
सब
भोजन पेट के लिए और पोट भोजन के लिए दोनों का दोनों का नाश होता. अगर सिर्फ भोजन के नाश होते तो हम छोड़ पेट का सेवन. प्रभु पेट का भी नाश हो जाएगा, भोजन के भी नाश हो जाएगा. वही मन में रखकर वो खाना खाना. खाने के ऊपर ध्यान मत रखना, लेकिन वजन के ऊपर ध्यान रखकर खाना खाना. Okay, let's pray. Father, we just thank you, Lord. I thank you for your children, Lord. They are your children. I pray that you would bless them and you would keep them and you would prepare them. Oh, Father, that you would be able to put the burden of a nation on some of the soldiers who will be prepared that day, Lord.
ताकि प्रभु उस दिन, प्रभु आपने इनमें से कुछ सिपाही जो तैयार होंगे उस दिन के लिए, उन पे प्रभु आप इस पूरा देश का बोझ को संभालने आप उन्हें तैयार कीजिए.
वी थैंक यू फॉर द प्रोविजन ऑफ लंच.
आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु.
लंच का प्रभु थैंक्सगिविंग.
हम इसे धन्यवाद के साथ स्वीकार
करते हैं. लॉर्ड वी आर ब्लेस्ड एज वी पार्टेक ऑफ इट.
और प्रभु हम सच में प्रभु इसे आशीष पाए जैसे हम इसमें शामिल हो.
थैंक यू फादर.
धन्यवाद.
थैंक यू लॉर्ड.
धन्यवाद.
इन जीसस नेम वी प्रे.
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना.
Amen.